देश में रैपिड एंटीजन परीक्षण किट्स की पर्याप्त आपूर्ति और नए ओमिक्रॉन मामलों की बढ़ती संख्या के बारे में चिंता अभी भी बनी हुई है। कई ऑस्ट्रेलियाई लोगों के लिए स्थानीय फार्मेसियों के बाहर रैट किट्स के लिए लंबी लाइन एक परिचित दृश्य सा बन गया है। बताया जा रहा है कि लोग स्वास्थ्य सलाह मांगकर पीसीआर परीक्षणों के लिए नहीं जा रहे और इसकी बजाय घर पर उपयोग करने वाले एंटीजन परीक्षण खरीदना चाहते हैं। रियायत कार्ड धारक यानी कंसेशन कार्ड होल्डर्स के लिए रैट किट्स के लिए इंतजार अब समाप्त हो गया है, क्योंकि इस समूह के लिए मुफ्त परीक्षण उपलब्ध हो गए हैं। इस समूह में शामिल है पेंशनर, बुजुर्ग और कम आय वाले लोग। इन लोगों को 3 महीने की अवधि के भीतर फार्मेसियों से 10 निशुल्क परीक्षण की अनुमति है। फार्मेसी गिल्ड ऑफ ऑस्ट्रेलिया के अध्यक्ष ट्रेंट ट्वोमे ने 9 नेटवर्क को बताया कि रोल आउट के साथ पहले से ही कुछ समस्याएं हैं।
We will have enough over the course of the program, but we don't have enough today. And so there are 6,000 community pharmacies in Australia, and 804 pharmacies went live this morning. So that's nationwide. There are pharmacies in every state and territory that will go live today, but 804 pharmacies out of 6,000 means simply the majority of pharmacies will not be going live.
ऑस्ट्रेलिया में चल रही आपूर्ति संबंधी समस्याएं कुछ चिंता तो पैदा कर रही हैं, जहां दैनिक मामले हर दिन हर दिशा से आ रहे हैं, और वहीं न्यू साउथ वेल्स और विक्टोरिया में स्कूलों को फिर से खोलने की योजनाएं तेजी से बनाई जा रही हैं, जिसके अंतर्गत स्कूली छात्रों और कर्मचारियों को 2 बार साप्ताहिक रैपिड एंटीजन परीक्षण जमा करने के लिए कहा जाएगा। इसका आधा खर्च सरकार उठाएगी। रैट किट्स की आपूर्ति के मुद्दे के अलावा अब इस बारे में खुली अटकलें हैं कि अब ऑस्ट्रेलिया में ओमिक्रॉन लहर अपनी शिखर पर पहुंच गई है। यह बात देश में कोविड मामलों की संख्या में उतार चढ़ाव और अस्पताल में भर्ती मरीजों के आंकड़ों को देखकर कहा जा रहा है। नॉर्दर्न टेरिटरी की स्वास्थ्य मंत्री नताशा फाइल्स का कहना है कि जिस तरह से राज्य में मामले सामने आ रहे हैं, वह उसे लेकर आश्वस्त हैं, जबकि अस्पतालों में भर्ती होने वाले मरीजों की संख्या भी बढ़ी है, जिसमें से कुछ लोग गहन देखभाल में हैं।
We've now had a couple of days of lower numbers in the Northern Territory in that 200 to 300 range, and that's seeing our rolling 7-day average coming down to under 400. We do acknowledge that usually earlier in the week we do see a bit of a lag in testing. Because of the weekend. We also are seeing bumpy results in our testing because of the isolated conditions we live in the Northern Territory, the remoteness. But we've certainly flattened the curve.
वहीं साउथ ऑस्ट्रेलियाई प्रीमियर स्टीवन मार्शल का कहना है कि सरकारी क्लिनिकों में सीमित संख्या में रैपिड टेस्ट उपलब्ध हैं। वे कहते हैं कि राज्य की कोविड से जुड़ी समिति इस सप्ताह बैठक करेगी ताकि चर्चा की जा सके कि कैसे मामलों की संख्या को और सीमित किया जा सके।
We'll be looking at a range of topics. We'll obviously be getting some further modelling back from Professor Ross with regards to how we may set about easing restrictions in South Australia. We'll have a discussion again about Aboriginal and Torres Strait Islander communities and more vulnerable communities across South Australia. And we'll also be looking at elective surgery.
देश के अधिकांश राज्य स्कूलों के खुलने पर मामलों की संख्या में वृद्धि की आशंका जता रहे हैं। क्वींसलैंड के मुख्य स्वास्थ्य अधिकारी जॉन जेरेट का कहना है कि स्कूल के पहले टर्म की शुरुआत में राज्य में ओमिक्रॉन लहर का चरम और फैलेगा।
The peak does not mean the end. That means the high point. The other thing I should draw everyone's attention to is that schools will be recommencing in 2 weeks' time, and it's likely that when that occurs, there will be a further, probably extension of the peak. So it may well be that we have a longer, flatter period because of schools.
New South Wales में कोविड से जुड़े मरीजों के अस्पतालों में भर्ती होने की संख्या में वृद्धि हुई है। मगर मुख्य स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर केरी चैंट का कहना है कि ऐसा लग रहा है कि राज्य की स्थिति में कुछ सुधार आया है।
But it is pleasing that when we look at a range of measures, our assessment indicates that the spread of COVID virus is slowing, our situation is stabilizing, and whilst we expect to see a little bit of an uptick in transmission associated with schools going back, I just want to say that this can be mitigated by the actions of you as individuals.
हाल ही में न्यू साउथ वेल्स में स्कूलों को खोलने की योजना की घोषणा की गई थी। प्रीमियर डोमिनिक पेरोटे ने माता-पिता को आश्वस्त करने की मांग की है और उन्होंने कहा है कि वे समझते हैं कि परिवार चिंतित हैं, लेकिन यह एक अच्छी योजना है.
The massive operation which we set out to achieve in relation to the distribution and obviously the acquisition of rapid antigen tests has been incredibly successful. Already today we have 5 million rapid antigen tests that have been distributed to schools across our state and the rest are following over the next day.
Victoria Rajya bhi karmchariyon aur chhatron tak rapid test kits pahuncha raha hai. मगर क्वींसलैंड ने इसे खारिज कर दिया है. क्वींसलैंड स्वास्थ्य मंत्री एविड डियथ का कहना है कि उन संसाधनों का कहीं और बेहतर उपयोग किया जा सकता है.
There is not advice or recommendation from AHPPC or the Chief Health Officer that we need to do this level of testing in young people. You know, it's not a comfortable test at the best of times, and we just don't believe that at this stage we need to be testing children in that way and that regular, knowing also that there is a shortage of supply of these tests as well. We believe that, you know, those tests are best focused in the areas where we need them the most.
Diet कहती हैं कि टीकाकरण ही स्कूलों को खोलने की योजना का एक प्रमुख आधार है.
5 to 11 year olds, we are now almost at 25%, which means almost 1 in 4 of our 5 to 11 year olds are vaccinated now, 24.62%. And I remind parents that it's just as important to get your 12 to 15 year olds vaccinated as well. We are not at 70% double dose for the 12 to 15 year olds. So we really want to see those numbers come up before they start the school year.
Victorian Premier Daniel Andrews कहते हैं कि टीकाकरण से छात्रों और स्कूलों के कर्मचारियों को मदद मिलेगी और स्वास्थ्य प्रणाली पर भी दबाव कम होगा.
Nothing's more important when it comes to protecting you, the people you love, and the people that we all count on, our nurses, our ambos, and our doctors, the whole team across our health system. Nothing's more important for all of those reasons than getting a third dose.
ऑस्ट्रेलिया में उपयोग के लिए चौथे टीके को मंजूरी मिल गई है, जिससे देश के टीकाकरण कार्यक्रम में और तेजी आएगी. स्वास्थ्य मंत्री ग्रेग हंट का कहना है कि नोवावैक्स को 24 जनवरी को अंतिम मंजूरी दे दी गई. उनका कहना है कि नोवावैक्स एक प्रोटीन आधारित टीका है और उन लोगों के लिए ठीक होगा जिन्हें स्वास्थ्य कारणों से अभी तक टीका नहीं मिल पाया है.
The specific advice of the technical advisory group on immunization is that it will be a two-dose course with a minimum of 3 weeks between the first and second doses. It's a protein-based vaccine, and so for some who may have had contraindications or reactions with regards to other vaccines, this will provide an additional opportunity for them, as well as those who, for whatever reason, have not taken up the program so far.
SBS News से डेबोरा गुरेरके की इस रिपोर्ट को प्रस्तुत किया है नताशा कॉल ने SBS हिंदी के लिए.